తమ్మనుమపి సచీ పుత్రమత్రా స్వరూపం రూపం తస్యావ్రజపురి పురిం మాధురిం కోష్ఠవాటిం రాధాకుండం గిరివరమహో రాధికా మాధవాస ప్రాప్తో జస్య ప్రతితి కృపయా శ్రీగురూపం వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయకే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరక్షే అంగశ్యామలిం ఛటాభిరవితో మందే కృతేందే వరం బృందారణ్య నివాసినం హృదిల సద్దామాభిరామోదరం రాధాస్కంద నివేశితోత్తమ రాధ్యాయం దామో తవైవాస్మి తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విగ్రహ రాధే సన్నయమామ చరణం భక్తవిహీనా అపరాధలక్ష్యై క్షిప్తాశ్చ కామాదికరం కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్నా విందే నమస్తే ఇదంతే ముఖం భోజం ఏతత్ ఇదంతే ముఖం భోజం అవ్యక్త నీలై వితం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తస్య మోహశ్చంబితం బింబ రక్త్రాధరం మే మనస్యా విరాస్తాం అలం లక్ష్య లాభై హే దేవ్ తుమారా జో ముఖమండల్ హై అత్యంత శ్యామల్ और लोह लोहित वर्ण के कुटिल केशों केश पाश से घिरा हुआ है, आच्छादित है। माता जसोदा जी के कर के द्वारा पुनः पुनः चंबित है। बिंब फल की भांति रक्त वर्ण जो अधर जुगल हैं वे परम मनोहर हैं। ऐसा जो आपका मुख कमल है वो मेरे हृदय में सर्वदा सदा सर्वदा प्रकाशित हो। मुझे लख लख दूसरे वरों से कोई आवश्यकता नहीं है। विग्रह में भी श्री विग्रह में भी कृष्ण का मुखमंडल ही प्रधान है। वही हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रस्फुटित हो। अभिप्राय कहते इदंते कदाचित ध्यान योग में भी आपका यह मुख का अतुलनीय सौंदर्य हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो। ध्यान योग में भी आपका मुखम भोज मुख रूपी जो कमल से मुखी पद्म है अर्थात प्रफुल्ल कमल खनि निखिल संताप को दूर करने वाले और परमानंद रसमय है। यही मुख हमारे मन में ध्यान के द्वारा भी सदा सर्वदा प्रस्थित हो। वह किस प्रकार से मुखमंडल है? परम श्यामल स्निग्ध लोहिता और कुटिल केश पाश के द्वारा अच्छा देते मानो भौंरे हैं। मुख कमल है, भौंरे हैं जो उसका रसास्वादन करना चाहते हैं। कमल जिस प्रकार से भ्रमरों के द्वारा परिवेष्टित होता है उसी प्रकार से केश समूह भी के समूह के द्वारा मुख परिवेष्टित है। यशोदा जी यहां पर नाम नहीं दिया, गोप्या कहा, गोप्या से यशोदा माँ के द्वारा तो है ही है, गोप्या के द्वारा राधा जी के द्वारा भी है, इसलिए राधा जी के द्वारा मुख पुनः पुनः चुंबन, वही बदन कमल महासौभाग्यमान शालिनी राधा जी यशोदा जी के द्वारा पुनः पुनः चंद स्फूर्ति होने चुंबित होने पर भी मेरे मन में सदा प्रकटित हो। अथवा पूर्व श्लोक में सदा, इस श्लोक में भी सदा सर्वदा का व्यवहार होना चाहिए। श्री मुख कमल की विशेष शोभा बतला रहे हैं, बिंब वक्त्राधरम में बिंब फल, उसका ऊपर का भाग बड़ा सुकोमल रहता है पकने के बाद में, और उसमें सिकुड़ने से उसमें क्या अधरों जैसी सिकुड़न उसमें हो जाती है, रक्त वर्ण का होता है, वही मुख मंडल हमारे हृदय में सुशोभित हो। मैं लाखों लाखों और वर नहीं चाहता। नमो देव दामो दरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख ज्वालाधिमग्नम कृपा दृष्टि विष्टति दीनम बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्ष देश। हे दिव्य रूप विशिष्ट देव, मने दिव्य रूप विशिष्ट हे देव, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल दामोदर, हे विष्णु अचिंत महाशक्ति संपन्न, हे अनंत, हे सर्व, मेरे ईश्वर, विष्णु माने यहां पर मेरे ईश्वर, ते हे प्रभो, हे ईश, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। मुझ जैसे बहुत संसार में दुख, संसार दुख में निमग्न अत्यंत दीन अज्ञ व्यक्ति को का उद्धार करें और कृपा दृष्टि वर्षण कर मेरे नैनों के सामने दृष्टिगोचर। यहां पर नैन का आ गया, अभी तक तो मन ही मन कर रहे थे, उसे संतुष्टि नहीं, अब ये मन ही मन में कर रहे। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि मैं नैनों के द्वारा भी उस बाल गोपाल रूप को मैं देखूं। इसके लिए उपाय क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा ही मैं इनकी प्रार्थना करूं तो ये मेरी प्रार्थना सुने, ऐसा स्थिर करके नाम संकीर्तन करने लगे। कातर भाव के साथ में प्रार्थना करें, नमः, मूल श्लोक में तुभ्यम पद यहां जो कर लो, तुभ्यम नमः, आपके लिए नमस्कार है, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। वे भाव भय गौरव प्रेम विकलता प्रयुक्त, प्रेम के उद्रेक विशेषता साक्षात भावे तुभ्यम नहीं कह पाते, इस कारण से भय से प्रेम के उद्रेक से तुभ्यम छूट गया, अब बस तुम्हारे ही चरणों में प्रणाम करने लगे। हे प्रभु मदीय ईश्वर, प्रभु माने मदीय ईश्वर, तुमको नमस्कार है, तुम प्रसन्न हो क्यों? दुख के दुख जालाब्धिमग्न, दुख के जाल में मैं निमग्न हूं। दुख क्या है? लौकिक दुख तो है नहीं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, यही दुख है। और वो कैसा है? महाजाल या जल अवधि, जल के समुद्र, अथाह जल के समुद्र के समान है। जन मरण संसारिक दुख अथवा तुम्हारा अदर्शन जनित दुख वो समुद्र तुल्य है। मैं अपने कर्मवश उसमें निमग्न हूं, इस सब दुखों के उत्पीड़न को मैं सह नहीं पाता, अतः आप हमारे प्रति प्रसन्न हैं। अति दीनम, इस शब्द का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, मैं साधु संघ से विहीन हूं। ये बहुत प्रधान है। सब दुख एक तरफ और साधु संघ रहित होना एक तरफ का दुख। सब दुख रहने पर भी साधु का संग हो तो कल्याण हो जाता है, किंतु सब सुख रहने पर भी साधुओं का संग न रहे जो हमको शासन कर सकें, हमारे लिए निर्देश कर सकें साधन, ये सबसे बड़ा दुख है। सहायहीन, इसलिए साधु संग के बिना असहाय हूं, साधन भजन भी मेरा कुछ नहीं है। जब विचार किया जाए तो देखा जाए तो साधन भजन भी हमारा क्या है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से तुलना करो, क्या साधन? कुछ नहीं, खाते पीते आराम से मौज करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी एक चुल्लू मट्ठा बस, दिन रात कैसा कठोर भजन करते थे। हम लोगों का कठोर भजन कुछ नहीं, इसलिए भी दुखी हैं। हम लोगों के लिए कह रहे हैं, मैं जीता हुआ भी मरा के समान हूं, आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हूं। ओ, मैं बहुत कुछ बोल गया, पहला श्लोक भी खत्म हो गया। हैव यू नोट डाउन फर्स्ट श्लोक?
Now Srila Gurudev is explaining the fifth verse of Sri Dhammarasa. Idante Mukambodam Abhyapta Nirai, etc. In this verse, Sri Sata Rishi is praying, Hey Dev, your face has very beautiful dark complexion and it is surrounded by your soft glowing locks of black hair which are tinged with red. And your face is beautified by your lips, which appear to be red and soft like mineral fruits. May that face of yours, which is kissed again and again by Mother Yasoda, be manifest within my heart always. I have no need of any other benediction. This is the general meaning of the verse. incarnation of Srila Sanatana Goswami. When one remembers the Shiva Vigraha of Shri Krishna, then the place of Shri Krishna is prominent. So that's what Rishi is saying.
এর মধ্যে নাম গোপ্যা আছে,
here the word Gopya refers to Mother Yashoda, or alternatively, it may suggest that Srimati Radharani is repeatedly kissing the face of Shri Krishna. So in this verse, the lips of Shri Krishna have been compared to bimba fruit. If a bimba fruit is already ripened, then it becomes very soft. And so soft, if you touch it, it will break. So Krishna's lips, they appear to be so soft and reddish. So then, in the next verse, Sri Satya Rishi prays, Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Prasiddha Prabodhuka Jalabdi Vaknam. So he said, Namo means, I offer my obeisances to you. Deva. Deva means, your qualification is that you have a brilliantly radiant transcendental form. Damodar. By uttering the name Damodar, Satyavat Rishi is remembering how Krishna has the quality of Bhakta Vatsalya. That means he is extremely merciful and conquered by the love of his devotees. Namu Deva Damodar Ananta. Ananta means, or you are possessed of unlimited, inconceivable powers. Ananta Vishnu. Oh, Vishnu means, you are my Ishwara. You are my master. So please be satisfied with me. I am suffering. So kindly shower your mercy upon this wretched person. What mercy do you want? I want the mercy by which you will appear before my very eyes. So as Satyavat Rishi was offering his prayers, first he was praying to see Krishna in his heart at the time of meditation. But now his mood has intensified and he's praying to have direct darshan of Shri Krishna. Therefore, if one wants to get the direct darshan of Shri Krishna, there's only one method to attain it. That is Nam Sankirtana. So that is indicated in this verse. In the very verse in which he's praying for direct darshan of Krishna, he's doing Nam Sankirtana by calling out the names. Hey Dev, Hey Damodar, Hey Ananta, Hey Vishnu, Hey Prabhu. So in this verse, it says Nama. So you should say Tubhyam Namaha. But this word Tubhyam, unto you, has been dropped. So Srila Sanatana Goswami Prabhupada suggests that he has dropped this word because of giving three reasons. One is that fear. One is due to respect, and another reason due to praying udrek, very the intensity of his love. So here he says, Juka Jalabdi Magnam. Magnam means, I am immersed in Jalabdi, the ocean of what? Duk. So the ocean of Duk, the ocean of suffering, can have two meanings. One meaning is the ocean of cross and death in this world. And the other meaning of suffering is, I am suffering because I am bereft of your darshan. So here he said, I am very fallen and wretched, ati din. I am completely destitute. So here, what does it mean to be wretched? One meaning is, I am sadhu sangha vihin, devoid of the association of pure devotees. If someone in this world is undergoing many difficulties and many calamities, but they have sati sangra, then their life is perfectly auspicious. But if a person is prosperous in this world, but bereft of sati sangra, then his life is completely inauspicious. So, in this very humble mood, Satchitananda Rishi is praying, O Krishna, be pleased with me and sprinkle your mercy upon me.
अब स्तुति के प्रभाव से पहले जो मन ही मन में दर्शन करने की अभिलाषा कर रहे थे, जो उनके हृदय में परिस्फुट हो प्रकाशित हो, अब उनके हृदय में भावना आई, नहीं मैं ये चाहता हूं कि आपके इस बाल गोपाल परम सुदुर्लभ रूप को मैं अपने आंखों से देखूं। इस प्रार्थना के द्वारा ये निवेदन किया जा रहा है, इस बाल गोपाल को सुंदर यशोदा मैया और राधिका के द्वारा चुंबित जो बाल गोपाल रूप है, परम दुर्लभ है, इसलिए पहले ही उन्होंने ये बार महीने ही मांगा, क्रमशः बढ़ते गए। इसलिए कह रहे हैं पहले मन ही मन में दर्शन करने के लिए मांगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 अब कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, आप हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर हों। मन की अपेक्षा आंखों से दर्शन करना बृहद भगवतामृत में उसका वैशिष्ट्य बतलाया गया। मन ही मन में दर्शन होने से बातचीत होना असंभव है, उनको प्यार करना असंभव है, उनका चुंबन करना असंभव है, इसलिए बृहद भागवत अमृत में यह बतलाया गया, हमने पहले इसका पाठ किया है। अब सनातन गोस्वामी फिर दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहले तो बतलाया गया कि तनाख्या भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, जैसे गोपियों ने भी पाया था, सभी लोग कीर्तनाख्या भक्ति के द्वारा ही पाते हैं, इसलिए कीर्तनाख्या भक्ति प्रकाशक हे देव इत्यादि संबोधन जो किए हैं उसका दूसरा अर्थ दिखला रहे हैं। देव माने दिव्य रूप, परम सुंदर, उसको दर्शन करने की इच्छा हुई। दामोदर, दामोदर माने दाम में बध गए, भक्त वात्सल्य गुण सूचित होता है, तो हमारे भक्ति कभी वशीभूत हो करके आप कृपया हमें दर्शन दें, आंखों से दर्शन दें, जैसे यशोदा मैया ने उन्हें बांध दिया, इसलिए आप बड़े भक्त वत्सल हैं, बंध गए, उसी प्रकार से दर्शन दीजिए। अनंत, जिनका अंत नहीं है, अर्थात असीम कृपामय है, इनकी कृपा की सीमा नहीं है, इसलिए कृपा वृष्टि वितरण करने में कर करके हमें अनुग्रहित कीजिए, आप असीम कृपामय हैं। प्रभो हे अनंत, हे अचिंत अद्भुत महाशक्ति संपन्न, ऐसे आप हो, इंद्रियों के अग्राह्य हो, किंतु अचिंत शक्ति के अचिंत महाशक्ति के प्रभाव से ये सब संभव हो सकता है। आप असीम कृपालु हैं, अनंत कृपालु हैं, भक्त वात्सल्य आप में है, तो हम जो इच्छा कर रहे हैं वो जरूर आप कर देंगे। मैं योग्य तो नहीं, तीन हूं, तभी आप कृपा करेंगे। आप परम स्वतंत्र हैं, ईश माने परम स्वतंत्र, अयोग्य को भी जो अनुग्रह कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बतलाया है उसमें, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो में। इसलिए योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारो करुणा साथ, ऐसा ही प्रार्थना होना चाहिए। और यथार्थता भी हम लोगों के लिए ऐसा ही, योग्यता कुछ नहीं है। वो यदि कृपा कर इतना तक की कृपा की आज साधु संग दिया तो इतना भी और आगे कर देंगे। विष्णु सर्वव्यापक, उनको कोई बांध नहीं सकता, किंतु दामोदर है साथ ही साथ। ऐसे सर्वव्यापक भी प्रेम रज्जु से बंध गए वृंदावन में, अथवा विष्णु हे वृंदावन के निकुंज में गह्वर आदि में प्रवेशशील। इसे भी दृष्टिगोचर होने के लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। आप तो सर्वत्र ही हैं, आप कहीं भी हमें वृंदावन में दर्शन दे सकते हैं। इन संबोधन का फिर दूसरा दूसरे प्रकार से अर्थ बतला रहे हैं। हे अनंत अपरिच्छिन्न सीमा रहित विष्णु सर्वव्यापी तथापि दामोदर है, परम वात्सल्य के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। आपके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है, इसलिए मेरे अंदर में आशा है आप जरूर दर्शन देंगे। इसी प्रकार से दूसरे संबोधन का भी अर्थ समझ एक्सप्लेन। लास्ट यू शुड नो ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल अदर वर्ड्स लाइक दिस।
Elaborating.